नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। आज निवेश के बाजार में काफी सारे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन जब भी किसी वेतनभोगी व्यक्ति के रिटायरमेंट की बात आती है तो दो विकल्प मुख्य रूप से उभर कर आते हैं। पहला एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी EPF और दूसरा नेशनल पेंशन सिस्टम NPS। दोनों केंद्र सरकार के तहत आने वाली योजनाएं हैं और इनमें सही तरीके से निवेश करने पर रिटायरमेंट तक एक अच्छा खासा फंड भी जमा हो जाता है। आइए जानते हैं दोनों में से कौन सी योजना बेहतर है। EPF पर सरकार की ओर से गारंटेड रिटर्न दिया जाता है, जिसका ऐलान सरकार के द्वारा साल के आखिर में किया जाता है। NPS में रिटर्न इक्विटी आवंटन पर निर्भर करता है। अगर आपने अधिक इक्विटी वाला प्लान ले रखा है तो फिर लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अधिक रिटर्न के साथ यहाँ EPF के मुकाबले जोखिम भी बढ़ जाता है। EPF में आप निवेश करने के विकल्प को नहीं चुन सकते, आपका पैसा एक निश्चित फंड में जमा हो जाता है। वहीं NPS आपके सामने चार विकल्प होते हैं, आप अपने जोखिम के मुताबिक निवेश के विकल्प का चयन कर सकते हैं। इसमें आप इक्विटी, कॉरपोरेट डेब्ट आदि का विकल्प चुन सकते हैं। आयकर जांच विभाग की मुंबई इकाई ने मार्च 2022 में रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी के खिलाफ 2015 काला धन अधिनियम के तहत एक आदेश पारित किया। काला धन अधिनियम आदेश 2019 में पहली बार कथित अघोषित संपत्ति पर उद्योगपति को नोटिस जारी करने के बाद दायर किया गया था। अनिल अंबानी को जांच टीम ने सवाल भेजे थे, लेकिन उन्होंने उन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। BMA आदेश को दो अपतटीय आश्रयों बहामास और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूहों में अनिल अंबानी की संस्थाओं के लाभकारी स्वामित्व का विस्तार करने के लिए समझा जाता है। बहामास में अनिल अंबानी ने 2006 में एक अपतटीय कंपनी ड्रीमवर्क होल्डिंग्स इंक के साथ डायमंड ट्रस्ट की स्थापना की। CBDT द्वारा विदेशी कर और कर अनुसंधान डिवीजन के माध्यम से बहामा को भेजे गए अनुरोधों के बाद पता चला कि इसका स्विस बैंक खाता UBS बैंक की ज्यूरिख शाखा में है। आदेश में अपतटीय संस्थाओं और लिंक किए गए बैंक खातों में 800 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन सामने आया है। सूत्रों ने बताया कि ये आंकड़ा मौजूदा रुपया डॉलर दर के आधार पर लगाया गया है। BVI में 2010 में अनिल अंबानी द्वारा निगमित एक अन्य अघोषित अपतटीय कंपनी नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड है। सिंगापुर के राज्य के स्वामित्व वाले निवेशक टेमासेक ने सोमवार को कहा कि वो अपने शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों को चलाने की दिशा में एक कदम में एक निवेश मंच जेनजेरो स्थापित करने के लिए $5 बिलियन की प्रारंभिक राशि का निवेश करेगा। टेमासेक ने कहा कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई जेनजेरो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जलवायु संचालित प्रौद्योगिकियों, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए समाधान और सेवाओं के लिए पूंजी तैनात करेगी। जेन जीरो का नेतृत्व नामित मुख्य कार्यकारी अधिकारी फेडरिक टीओ करेंगे, जो वर्तमान में टेमासेक इंटरनेशनल में सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के प्रबंध निदेशक हैं। टीओ ने कहा, तत्काल कार्रवाई के महत्व को स्वीकार करते हुए हम निवेश के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो स्थायी वित्तीय रिटर्न सुनिश्चित करते हुए 2030 तक सकारात्मक जलवायु प्रभाव प्रदान कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल डीलरों के निकाय फाडा के अनुसार यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री पिछले महीने बढ़ी, लेकिन दो पहिया और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री मई 2019 के पूर्व कोविड महीने की तुलना में कम रही। सोमवार को फाडा ने कहा कि मई में कुल ऑटो रिटेल 16,46,773 इकाई रहा, जो मई 2019 में 18,22,900 इकाई था। मई 2019 की तुलना में मई 2022 के रिटेल से पता चलता है कि बिक्री अभी भी विकास पथ पर नहीं है, क्योंकि कुल रिटेल में 10% की गिरावट आई है, जबकि PV और ट्रैक्टरों ने अपना सकारात्मक प्रदर्शन जारी रखा। दो पहिया, तीपहिया और CV की बिक्री फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाडा के अध्यक्ष विंकेश गुलाटी ने एक बयान में कहा, अभी तक स्वस्थ रन रेट के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मई 2021 के साथ साल दर साल की तुलना सभी श्रेणियों में असाधारण रूप से स्वस्थ विकास दर को दर्शाती है। उन्होंने कहा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मई 2021 और मई 2020 दोनों देशव्यापी तालाबंदी से प्रभावित थे, क्योंकि कोविड महामारी के कारण उनके अनुसार मई 2019 के साथ बेहतर तुलना होगी, जो कि एक सामान्य प्री कोविड महीना था। उद्योग के 5 अधिकारियों ने कहा कि मई में भारत का पाम तेल निर्यात 7 महीनों में सबसे अधिक था और अप्रैल में 15% ऊपर था, क्योंकि देश ने मलेशिया, थाईलैंड और पापुआ न्यू गिनी से अधिक कमोडिटी की सोर्सिंग करके इंडोनेशियाई निर्यात पर अंकुश लगाया। विश्व में वनस्पति तेल के सबसे बड़े आयातक भारत द्वारा अधिक खरीद से मलेशियाई पाम तेल की कीमतों को समर्थन मिल सकता है, जो रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब कारोबार कर रहे हैं। 5 डीलरों के औसत अनुमान के अनुसार भारत ने मई में 660,000 टन पाम तेल का आयात किया, जो अप्रैल में 572,508 टन था। वनस्पति तेल ब्रोकरेज और कंसल्टेंसी सनविन ग्रुप के मुख्य कार्यकारी संदीप बाजोरिया ने कहा कि इंडोनेशिया से भारतीय आयात मई में गिर गया, लेकिन रिफाइनर मलेशिया, थाईलैंड और पापुआ न्यू गिनी से अधिक खरीदने में कामयाब रहे। दुनिया के सबसे बड़े पाम तेल उत्पादक और निर्यातक इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल को घरेलू स्तर पर बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उत्पाद के निर्यात को रोक दिया। जकार्ता ने 23 मई से निर्यात को फिर से शुरू करने की अनुमति दी, लेकिन घरेलू आपूर्ति की सुरक्षा के लिए नीतियां बनाई। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।